अयान आयु के साथ हॉस्पिटल में था। कुछ देर बाद उसे एक मेजर सर्जरी करनी थी, लेकिन मूड सही नहीं होने की वजह से अयान ने वो सर्जरी करने से मना कर दिया और वहां से चला गया। वहीं अयान के इस तरह बैकआउट करने पर आयु हैरान थी। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं था। ओ गॉड, नो 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 अयान, यू कांट डू दिस। ये एक मेजर सर्जरी है जो तुम्हारे अलावा और कोई हैंडल नहीं कर सकता। तुम्हारे पास बैकआउट करने का ऑप्शन ही नहीं है, आयु ने घबराई आवाज में खुद से कहा और फिर दौड़कर अयान के पीछे जाने लगी। आयु ने देखा अयान पार्किंग एरिया की तरफ जा रहा था। उसे रोकने के लिए आयु ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, डॉक्टर अयान प्लीज स्टॉप, आप जानते हो ना अच्छे से पेशेंट की हालत काफी कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मल सर्जरी होती तो कोई भी डॉक्टर संभाल सकता था, पर आपने उन्हें एक होप दी थी। आप इस तरह किसी की उम्मीद नहीं छीन सकते। बोलते हुए आयु अयान के पास आ चुकी थी। आयु की बात सुनकर अयान वहीं पर रुका और मुड़कर बोला, मैंने उन्हें कुछ सोचकर ही होप दी थी, इसलिए मुझे उनकी जान लेने का कोई हक नहीं है। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में मैंने सर्जरी की तो सच में उनकी जान चली जाएगी। पर तुम उन्हें बीच ऐसे बीचमंच धार में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लिसन अयान, अगर तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। हम काफी टाइम से फ्रेंड हैं और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, तुम मुझे बता सकते हो। बोलते हुए आयु ने अयान का हाथ सहलाया। वो अपनी तरफ से अयान को इमोशनल सपोर्ट देने की पूरी कोशिश कर रही थी। अयान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आंखें बंद करके अपने स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करने लगा। उसने बड़बड़ा कर कहा, नो अयान, तुम्हारे पास हर बार की तरह ऑप्शन नहीं है। जो कुछ भी किया वो उन्होंने किया था, उसकी सजा हम पहले से बचपन से भुगतते आ रहे हैं। अब हमारी वजह से किसी और को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। सोचते हुए अयान ने आंखें खोली। आयु उसकी बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम फिलहाल के लिए मेरे लिए इतना ही कर सकती हो कि कुछ भी करके सर्जरी 2 घंटे के लिए डिले करवा दो। तुम्हें मुझे 2 घंटे देने होंगे ताकि मैं खुद को रिफ्रेश कर सकूं। अयान ने आंखें खोलकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। तुम अच्छे से जानते हो पेशेंट के लिए हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। उनकी हालत क्रिटिकल है, ऑलरेडी सर्जरी लंबी चलेगी। मैं नहीं चाहती कि किसी की जान जाए। किसी अपने को खोने का दर्द सहन करना आसान नहीं होता। जैसे ही आयु ने अपनी बात खत्म की, अयान ने तुरंत कहा, ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल मत किया कर, अब 5 मिनट तो दे ही सकती है। आयु ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया और अयान को हक कर लिया। वो उसे गले लगे हुए बोली, यू आर दी बेस्ट, और हाँ, मैं तेरी टेंशन सर्जरी के बाद खत्म कर दूंगी। रात को पार्टी करने चलेंगे। हाँ वो सब तो है, लेकिन मैं तेरी बात मान रहा हूँ तो तुझे भी मेरी बात माननी होगी। याद है ना मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, मेरी मॉम से दूर रहना है। अयान ने आयु की पीठ सहलाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरी मॉम, बहन, डैड और तुझसे जुड़े हर एक इंसान से दूर रह लूंगी, पर तुझसे नहीं। चल अब जल्दी से मेरे साथ अंदर चल, हमें चेंज भी करना है, आयु अयान से अलग होकर बोली। अयान के हाँ कहते ही वो काफी एक्साइटेड हो गई थी। आयु अयान का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर लेकर जा रही थी। वहीं आयु के चेहरे पर खुशी देखकर अयान का स्ट्रेस खुद ही दूर हो गया। दोनों अंदर अपने फर्ज को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ आरव कबीर के साथ अपने घर पहुंचा। वो दोनों अंदर गए, उन्होंने देखा गौरवी जी के पास माहिरा आई हुई थी। जैसे ही माहिरा ने आरव को देखा, उसके फेस पर हल्की स्माइल थी। माहिरा उठी और बिना आसपास के लोगों की परवाह किए आरव के गले लग गई। कहाँ थे तुम? मुझे लगा बिना बताए आऊंगी और तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन तुम तो घर पर ही नहीं थे और तुमने मेरे सरप्राइज के बदले मुझे ही शौक दे दिया। बोलते हुए माहिरा आरव से अलग हुई। फिर उसकी नजर आरव के होठों पर गई तो उसने उन्हें छूते हुए कहा, तुम्हें चोट कैसे लगी? आरव उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले माहिरा ने उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया। माहिरा फिर से बोली, तुम्हारे होठों पर स्वेलिंग है, ये कैसे आई? मैं फाइट क्लब गया था जहान के साथ फाइटिंग के वक्त। आरव की बात पूरी भी नहीं हुई कि माहिरा उसकी बात बीच में काट कर बोली, इस जहान की तो मैं यहाँ से निकलते ही उससे मिलने जाऊंगी और उससे इस बारे में बात करूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? माहिरा की बातों से साफ था कि वो काफी गुस्से में थी। काम डाउन माही, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो एक नॉर्मल बॉक्सिंग मैच था जो अक्सर मैं अपने गुस्से को शांत करने के लिए करता हूँ। आरव माहिरा को समझाने की कोशिश कर रहा था। और तुम्हें गुस्सा किस वजह से आया? माहिरा ने पूछा। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे गुस्सा किस वजह से आया होगा। चलो अब हमारी बातें बहुत हो गई, दादी से मिलना है मुझे। बोलते हुए आरव ने माहिरा को खुद से अलग किया और गौरवी जी के पास जाने लगा। गौरवी जी माहिरा के बर्ताव को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी, तो वहीं कबीर भी शांति से उसकी तरफ देख रहा था। आरव गौरवी जी के बेड पर उनके पास में बैठा और बोला, दादी आपकी तबीयत कैसी है अब? अगर किसी की भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताइएगा। चलो शुक्र है तुझे मेरी याद तो आई, और तू ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है?
है, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुझे नहीं, तो क्या तेरी इस फेक गर्लफ्रेंड को बताऊंगी, गौरवी जी ने सीधे सीधे कहा। गौरवी जी की बात सुनकर आरव और कबीर सहित माहिरा भी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने बात को बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं किया और जैसे के तैसे बोल दिया, शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए, गेट वेल सून दादी, ताकि आरव आपसे अपना ध्यान हटाकर बिजनेस पर फोकस कर सके, माहिरा ने टॉन्टिंग वे में कहा और फिर आरव को बाय हक देने के बाद वहां से चली गई। माहिरा के वहां से जाते ही कबीर ने गौरवी जी से हंसते हुए पूछा, दादी आप सच में ग्रेट हो, आपने तो उनकी बोलती ही बंद कर दी। मुझे अच्छे अच्छों की बोलती बंद करनी आती है बेटा, गौरवी जी ने कबीर से कहा। फिर उन्होंने आरव को देखकर घूर कर देखा और सख्त लहजे में कहा, और तू आरव मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने इस लड़की के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ाने की सोची भी तो तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। मुझे वही लड़की पसंद है, वो एम्बर आइज वाली जिसने मेरी सर्जरी की थी, इस खानदान की बहू तो वही लड़की बनेगी, बाकी इससे जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ा ले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गौरवी जी की बात सुनकर आरव आंखें बड़ी करके उनकी तरफ देख रहा था तो वहीं कबीर की हंसी छूट गई। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कौन होता है दादी, आरव ने धीमी आवाज में कहा। आरव या गौरवी जी में से कोई कुछ बोलता उससे पहले कबीर ने जल्दी से कहा, डोंट वरी दादी, आरव सर इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है हमने एक बहुत बड़ी लैंड खरीदी है और उस पर एक हॉस्पिटल बनाने का प्लान कर रहे हैं। क्या जरूरत है एक और हॉस्पिटल बनाने की, हमारे पास ऑलरेडी एक है, गौरवी जी ने जवाब दिया। हाँ है दादी, पर गौर से सोचकर देखिए, कल को हमारी जूनियर डॉक्टर फ्यूचर में सीनियर बन जाएगी, उसे खुद का हॉस्पिटल चाहिए होगा, तो अलग से बाद में बनवाने से अच्छा है ना कि पहले ही बनवा ले, कबीर ने गौरवी जी को भी वही लॉजिक दिया जो थोड़ी देर पहले उसने आरव को कहा था। क्या सच में आरव ये सब उसके लिए कर रहा है, तब तो एक क्या चार हॉस्पिटल खड़े कर दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, गौरवी जी ने खुश होकर कहा। मेरा आरव किसी के बारे में इतना सोच रहा है, आयु सच में बहुत लकी है, मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगी, बिल्कुल संस्कारी सीधी और शांत सी लड़की है।
हाँ मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि कितनी संस्कारी सीधी और शांत है, सोचते हुए आरव ने अपने होठ के कोने पर हाथ लगाया। फिर आरव ने बात बदलते हुए गौरवी जी से कहा, दादी इन सब बातों को बाद में सोचेंगे, पहले मुझे हॉस्पिटल के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और उसके लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल के पेपर्स और मिस्टर कपूर का रेफरेंस लगेगा, मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या आप मेरे लिए उससे बात कर लेंगे? मैं क्यों बात करूँ, तो खुद ही जाकर उससे बात कराना, इससे बहाने आयु से भी मिलना हो जाएगा, गौरवी जी ने जवाब दिया। उनके मुंह से बार बार आयु का नाम सुनकर आरव ने मुंह बनाकर कहा, आपको उसका बच्चों जैसा नाम कुछ ज्यादा ही याद नहीं हो गया ना? हाँ क्योंकि सर्जरी के कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल नहीं आया था, इस बीच उसने मेरी बहुत देखभाल की थी, बस तभी से उसने मेरा दिल जीत लिया था। चल अब तू देर मत कर, कबीर जा तू भी इसके साथ, वरना ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देगा, गौरवी जी ने जबरदस्ती उन दोनों को हॉस्पिटल जाने के लिए भेज दिया। गौरवी जी की जिद करने पर मजबूरन आरव और कबीर को हॉस्पिटल के लिए निकलना ही पड़ा। आरव जहां आयु से मिलने के आस में हॉस्पिटल आया था, वहीं आयु अयान के साथ एक मेजर सर्जरी में बिजी थी। उन्हें अंदर रोटी में गए 4 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। मिस्टर कपूर सीईओ होने की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से उन पर थी, तो वो भी ओटी के बाहर पेशेंट के रिश्तेदारों के साथ मौजूद थे। अंदर जिस इंसान के सर्जरी हो रही थी वो एक मुंबई का जाना माना बिजनेसमैन था। जैसे ही आरव कबीर के साथ वहां पहुंचा और मिस्टर कपूर को ओटी के बाहर पाया तो उसने कबीर से दबी आवाज में कहा, ये तो आदित्य हलूवालिया है ना? हाँ वही है सर, हमारा वन ऑफ द बिजनेस राइवल, पर ये यहाँ क्या कर रहा है और मिस्टर कपूर इसके साथ क्यों बैठे हैं? कबीर ने जवाब दिया, ऑब्वियस सी बात है, इसका बाप बीमार है तो उसकी सर्जरी हो रही होगी, मैंने तो सुना था उसे ब्रेन ट्यूमर है और बचने का कोई चांस नहीं, जानते हो ना वो कैसा इंसान है, मैं तो उसके मरने की तैयारी कर रहा था, फिर कौन बेवकूफ है जो उसे बचाने में लगाए। आरत ने मुंह बनाकर रोटी की तरफ देखा, फिर उसे याद आया कि आयु और अयान दोनों न्यूरोसर्जन हैं। आरव ने गहरी सांस लेकर रोटी की तरफ देखा और बड़बड़ाकर कहा, तुम हमेशा मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने क्यों आ जाती हो डॉक्टर? मजबूरन आरव को आयु का वेट करने के लिए वहां रुकना ही पड़ा।